शहीद नकवी अमर कदारी शहीद नकवी अमर कदारी शहीद नकवी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपसे कोशिश करेंगे कि आज का मौजू में ही अपने आप को महदूद रखें, और हमारा मौजू शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली की शख्सियत होगा। और उसूली तौर पर जब हम इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो बमें निज़ामत करने वाले से लेके स्पीकर्स तक कोशिश करें कि जो मौजू हो हम उस मौजू पे रहें, तो शुरका भी उसमें उनकी शिरकत जो है ज़हनी और हर लिहाज से मरबूत रहती है। अपने जवानों से जो इस वक्त आईएसओ में हैं उनसे मुखातिब हैं। वाकयात आपने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारी बातें आपके सामने से गुजरी होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी शहीद जवानों से क्या चाहते थे और उनका तरीक़ेकार क्या था। ये जो डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं और या आईएसओ को फख्र हासिल है कि वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान में ना सिर्फ तशय्यो की तारीख एक नए अंदाज से रकम की बल्कि वक्त के इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद को एक नया रुख दिया था, तो उसमें क्या कमाल था। और उन जवानों की जिम्मेदारी है, आपने पीछे लिखा हुआ भी है कि बानी आईएसओ थे, तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो बानी था जिसने हमें रोक दिया हम उसके नक्शे कदम पर चलें। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कुछ हमने सीखा डॉक्टर साहब से, जो उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, डॉक्टर साहब एक चीज जवानों को जो सीखनी चाहिए डॉक्टर साहब के अंदर बहुत वाज़े थी, वो अपने जवानों को अपने साथ मरबूत लोगों को इस बात की तलकीन करते थे कि जो भी काम करें उसका हदफ वाज़े होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं आप। एक ऐसा इंसान ना बने जो मजदूरी करे और उसको ये ना पता हो कि उसको करना क्या है, उसको कहां तक पहुंचना है। और डॉक्टर साहब की खुद सारी जिंदगी इसी में गुजरी कि जब वो एक टारगेट जो बनाते थे उसको अचीव करते थे। एक बेहदफ जिंदगी, आप वो चाहे इस्लाम के लिए काम करें जिसका कोई हदफ ना हो, बस काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, बस अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। नहीं, डॉक्टर साहब बारहा कहा करते थे कि अपना हदफ वाजे रखें, अपना टारगेट वाजे रखें कि क्या करना चाहते हैं, और जब टारगेट वाजे कर लें तो उसकी तरफ अपना सफर शुरू कर दें। और टारगेट भी कोई छोटा ना रखा करें, हदफ हमेशा आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी कहते थे कि अगर आप ये सोचते हैं डॉक्टर्स के दरमियान, कभी मिसाल जो मेरे जहन के अंदर है, इसके अलावा भी अमूमन इस किस्म की बातें करते थे कि आप हदफ को जितना बड़ा रखेंगे आपकी हरकत भी इतनी बड़ी होगी, अगर हदफ आपका छोटा होगा तो आपकी हदफ आपकी हरकत भी छोटी होगी। ऐसे लोग ना बने। मसलन जवानों से पूछें, दोस्तों से पूछें, हम क्यों काम कर रहे हैं, बस आप भी काम कर रहे थे तो हम भी आपके साथ शामिल हो गए। डॉक्टर साहब एक मिसाल दिया करते थे कि ऐसे मुसाफिर ना बने कि सब ट्रेन में चढ़ रहे थे तो हम भी चढ़ गए भाग के, जब बैठ गए तो पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं, कहते कहाँ जा रहे हैं, तुम चढ़े तो हम भी चढ़ गए, मुर्दाबाद जिंदाबाद कर दे, अब समझ में नहीं आ रहा ट्रेन ले जा कहाँ रही है। तो ऐसे बेहदफ लोगों को कोई भी कहीं यूज कर सकता है, नहीं मालूम है जज्बात में जाके। लिहाजा हदफ को हमेशा बड़ा रखें। जैसे इस दोस्त ने कहा हमारे कि डॉक्टर साहब ने वक्त के इस्तेमार के खिलाफ, कह देना आसान होता है, अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद करने का अपना एक बहुत बड़ा टारगेट बनाया था और डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी में अचीव भी किया। और ये डॉक्टर साहब ही का कारनामा था कि लोग अमेरिका के खिलाफ उस जमाने में एक वक्त का डिक्टेटर ज़ियाउल हक था जो खुद अमेरिका की गोद में बैठा था, बहुत मुश्किल था कि अमेरिका के खिलाफ कोई बात करे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना काम किया, इतना काम किया कि अमेरिका मुर्दाबाद एक गाली बन गया था, क्योंकि टारगेट बड़ा रखा था। छोटे टारगेटों पे नहीं कि छोटी जगहों पे हम फिरका वारियत में बढ़ जाएं, फलां को मुर्दाबाद कहें, हम ट्रस्ट के मसाइल में घुस गए तो यहीं पर हमने सोचा यही हमारा टारगेट है, नहीं, अपना हदफ बड़ा रखें। जो आईएसओ के जवान हैं, हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, अपने हदफ को बड़ा रखें, कभी छोटे हदफ की बात ना करें। यूनिट के झगड़े, डिवीजन के झगड़े, फलां को करना है तो हमने तो नहीं, ये तो बहुत छोटे हदफात हैं। डॉक्टर साहब कहते थे अपना हदफ बहुत बड़ा रखो, रियासत तुम्हारा हदफ होना चाहिए, तुम्हारा हदफ वक्त का सबसे बड़ा इस्तेमार होना चाहिए। एक तो डॉक्टर साहब की ये सबसे अहम तरीन खसूसियत थी जो हमें अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब में एक चीज बहुत वाजे थी कि डॉक्टर साहब इमाम खुमैनी की जात से बिल्कुल क्लियर थे, जिसको आज हम खत्ते विलायत फकी कहते हैं ना, ये सिर्फ रस्मी नारा नहीं लगाते थे डॉक्टर साहब, वो इस पे यकीन रखते थे कि निजात का रास्ता यही है। अगर मिल्लत इस्लामिया बिलखसूस तशय्यो अगर निजात के रास्ते पे चलना चाहती है तो उसको हर हाल में वक्त के इमाम के हकीकी नायब के परचम के साए तले आना होगा, वरना इसके बगैर निजात नहीं है। आप 10 अपनी अलग सिमतें बना लें, लेकिन जो नजरिया इमाम खुमैनी ने हुकूमत इस्लामी या नजरिया विलायत फकी की सूरत में दिया था, डॉक्टर साहब उस पर दिलो जान से यकीन रखते थे, दलाइल रखते थे, और अपने दोस्तों को, अपने साथ मरबूत रहने वालों को भी इस बात की न सिर्फ नसीहत करते थे और अमली तौर पर इसका एहसास दिलाते थे कि यही एक वाहिद रास्ता है इस मौजूदा दौर में, ना सिर्फ निजात का रास्ता है बल्कि वो आपको इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से मरबूत कर देगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक चीज जो डॉक्टर साहब ने और पैदा की थी, जब कौमों में वो चीजें बन जाएं तो फिर कौमों को कोई शिकस्त नहीं देता, और वो थी कि शहीद परवर लोग पैदा करना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर साहब मौत को जवानों में इस तरह रासिक करना चाहते थे इस मिल्लत के अंदर कि मौत उनको जो है ना, मौत उनको खौफ में ना मुब्तला कर दे, उसका वो अमली मुजाहरा थे खुद। डॉक्टर साहब उन बुजदिल लोगों में नहीं थे जो मुझ जैसे आदमी की तरह यहां तकरीरें करता हो लेकिन जब फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने का मसला हो तो सबसे पीछे हो। कई वाकियात हैं, बुश आया उस जमाने में, उसके खिलाफ मुजाहरा करना था, वक्त का डिक्टेटर है, अमरीकी सदर आ रहा है, बुश सीनियर, डॉक्टर साहब फ्रंट लाइन पे पहुंच गए उसके खिलाफ मुजाहरा करने और गिरफ्तार भी हुए, नहीं डरे, अमरीकी सदर आता है तो आ जाए। यानी जब वो लाहौर एयरपोर्ट से निकल रहा था तो मैन उस जगह पे डॉक्टर साहब ने अपने रुफका के साथ अचानक पहुंच गए और गिलिल फाड़ कर उसकी मेन रोड पर आ गए जहां वीआईपी मूवमेंट होनी थी और अमरीका के खिलाफ बैनर खोल के नारेबाजी शुरू कर दी। जुर्रत चाहिए वक्त के बड़े तागूत के खिलाफ, ये वही कर सकता है जिसको मौत का खौफ ना हो, जो सिर्फ लफाजी ना करता हो अमली तौर पर। डॉक्टर साहब का एक था कि हर हाल में, दुनिया में वो कौमें कामयाब हैं जिन्होंने शहादत को अपना एक आदत बना ली है। मौत क्या है, आना जाना तो है ही, आज मैं हूं कल नहीं हूंगा, लेकिन जो लोग मौत से खौफजदा हो जाते हैं वो हर जगह अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं। डॉक्टर साहब में ये क्वालिटी मौजूद थी कि उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी जवान उनसे मरबूत होते गए, उनमें ख्वाहिश शहादत शिद्दत से थी। और यही डॉक्टर साहब की जो जब सऊदी अरब में हज के ऊपर बैंड लगा और यौम बरातुज मुशरकीन के लिए कहा गया कि ये नहीं हो सकता गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से, तो डॉक्टर साहब उन लोगों में से थे जो फ्रंट लाइन पे गए। कह देना आसान है सऊदी अरब, आज के दौर में भी कोई वहां एक आवाज तो बुलंद करे। गए, ना सिर्फ गए बल्कि खाने काबा के सामने जो दरवाजा बाबे उमरा उसमें मुजाहरा भी किया और पकड़े भी गए। डॉक्टर साहब कभी मौत से नहीं डरते थे, पर जिसको मौत आनी है उसको सो आएगी। और सबको पता था कि अब डॉक्टर साहब को फांसी हो जाएगी सऊदी अरब में, लेकिन हालात ऐसे हुए कि काई शहीद की शहादत हो गई और उस बुनियाद पे छोड़ना पड़ा। डॉक्टर साहब ने जो एक खूबी थी वो थी, चाहते थे कि कौम के अंदर एक शहीद परवर कौम जन्म दे जो वक्त के सितमगरों के खिलाफ, वक्त के इस्तेमार के खिलाफ बरसर पैकार हो जाए। एक चीज जो डॉक्टर साहब ने रासिक की थी वो था अमेरिका का खौफ खत्म कर दिया था। एक खौफ होता है ना कि अमेरिका ये कर देगा, अब हम पे इक्तसादी पाबंदी लगा देगा। आज भी हम पर ये खौफ तारी है ना, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े तबसरा निगार ये कहते हैं यूरोप ने अगर हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, आज अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया तो शायद हम भूखे मर जाएंगे। ये खौफ है जो इस्तमार, जो वक्त का शैतान हम पर तारी करता है और हम उस खौफ के तले दब जाते हैं। हालांकि अगर आप एक दफा तजिया करें अपना तो क्या कर लेगा वो, किस बात का खौफ है, क्या चीज छीन लेगा वो हमसे। अब तक उसने किसी कौमों की क्या चीज छीन ली। हम अपना तजिया करें, आज जो हम खौफजदा हो जाते हैं और हम कहते हैं कि आज यूरोप ने अगर हमसे फलां हम पर पाबंदी लगा दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारी गंदुम हमसे छीन लेगा, वो हमारी जरात हमसे छीन लेगा। हमें दिया क्या है उसने जो हमसे छीन लेगा वो, बस हमें खौफ है। हाँ, उन लोगों के लिए मसला है जो लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका तो मसला होगा। लेकिन आम आवाम, मैं आपसे पूछूं, आप पे क्या असर आएगा, कोई नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ने ये खौफ खत्म करके रख दिया था अमेरिका का। ये जो आप कहते हैं ना कि डॉक्टर का नारा याद है अमरीका मुर्दाबाद है, ये हकीकत में था कि हर महफिल में इतना नारा लगता था, ये हर सड़क हर जगह, बल्कि कंपटीशन बन गया था मजहबी और सियासी पार्टियों में कि कौन सबसे ज्यादा अमेरिका मुर्दाबाद लिखता है, कौन शहर की दीवारें अमेरिका मुर्दाबाद से काली करता है। ये तो वक्त के साथ साथ कम हो गई। तो डॉक्टर साहब ने एक चीज जो पैदा की और डॉक्टर साहब की खूबी थी जो हमें जवानों को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि वक्त के सितमगरों के खिलाफ, वक्त के इस्तेमार के खिलाफ, वक्त के शैतान के खिलाफ खौफ ज्यादा ना हो और ना अपनी महफिलों में इस खौफ को पैदा होने दें। कुछ नहीं कर सकते। क्या किया उन्होंने यमन के अंदर, ना सिर्फ वो दुश्मनों के खिलाफ, शायद दुश्मनों का तो जिससे वो दुश्मनी पालते हैं, ईरान का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने। आज शायद हम इस अमेरिका यूरोप के गर्विदा होकर, आप तो बेहतर जानते हैं, आज वो मुल्क जिस पर तमाम तर पाबंदियां हैं, जो खुद एक छोटा सा कुछ नहीं बना सकता था, हत्ता कि गिलास भी नहीं बना सकता था वो ईरान शाह के दौर में, हर चीज बाहर से आती थी। आज आप देखें पूरी कराची से लेकर पाकिस्तान की मार्केट भरी पड़ी है उनके खानों से, और उसका स्टैंडर्ड देखें, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्त यह कि हम अपने अंदर से खौफ पैदा करें। हाँ, अमरीका तबाह कर देता है अपने दोस्तों को। क्या किया अफगानिस्तान में, क्या दिया उसने उनको, भूख और अफलास के अलावा दिया क्या है। आज एन वक्त पे छोड़कर भाग गया। यूक्रेन में क्या किया उसने, वो रो रहा है कि हम ये कर देंगे, अब कुछ भी नहीं किया। वो अपने दोस्तों के लिए बड़ा खतरनाक है, कुछ नहीं देता वो। ये बात डॉक्टर साहब ने रासिख की थी, ये बात उसी इमाम खुमैनी की थी कि अमरीका कुछ नहीं कर सकता, तुम उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। एक चीज होती है कि डॉक्टर साहब जब अपने हदफ से वाजे हों, अपने अहद से वादे हों, तो जितना जब हम कहते हैं ना कि वो एक निज़ाम विलायत फकी के साथ मरबूत थे, तो असल में वो निज़ाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ है। आप इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की ज़ात से इतने मरबूत थे। असल हम जितना भी क़याम करते हैं, हम जितना भी उठते हैं, इमाम खुमैनी का क़याम, मौजूदा रहबरियत का आज के इस्तेमार के खिलाफ क़याम, असल में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की उस नहजत के लिए क़याम है। ये जो हम दुआए अहद में, ये अहद है डॉक्टर साहब, अमूमन दुआए आशूरा, ज़ियारत आशूरा और इसके अंदर जो हम अहद करते हैं वो जवानों से अमूमन तस्करा करते थे कि इन अहदों को ऐसे ना लिया करो, ये बैत है। हम जब कहते हैं ना कि या लैतना कुंतुम, असाबे हुसैन को मुखातिब करके अगर हम भी होते तो आपके साथ होते, डॉक्टर साहब कहते थे ये अहद है जो हम अहद करते हैं। इसी तरह जब हम दुआए अहद पढ़ते हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की, और इमाम जाफर सादिक से हदीस है कि जो 40 दिन तक मोमिन इस दुआ को पढ़े वो जरूर इमाम की नुसरत में होगा, जिसमें हम कहते हैं ये जुमले अदा करते हैं कि मैं अहद करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जुमले आपके सामने दोहराऊं, फिर हमें अंदाजा होगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा हदफ क्या होना चाहिए। खुदाया मैं आज के दिन, आज की सुबह, जब तक मैं जिंदा रहूं, हर सुबह इमाम ज़माना की बैत का अहद करता हूं। इनकी बैत मेरी गर्दन पर है, ना मैं इससे हटूंगा और ना मैं इससे रुदू गर्दानी करूंगा। खुदाया अगर इनके और मेरे दरमियान मौत वाकई हो जाए, जिसका तूने हतमी हुक्म दे दिया हमें, तो फिर मुझे किस हाल में उठाना कि मुझे जब मैं कब्र में हूं तो मुझे इस हाल में उठाना कि मैं कफन पहने हुए हूं, या मेरा कफन ही मेरा फौजी लिबास होना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं है, मैं इतना आमादा होना चाहिए कि मेरा कफन मेरा लिबास हो, मेरी तलवार मेरे हाथ में हो, मैंने नेजा अपने हाथ में लिया हो और मैं अपने दाई अजल की लब्बैक कहता हुआ उठ खड़ा हूं। तो दोस्तों डॉक्टर साहब क्या करते थे कि वो जवान जो जब ये अहद कर रहे हैं कि हम मरने के भी बाद भी इंतजार ना करें कि हम उठेंगे नया लिबास पहनेंगे, नहीं मैं इसी कफन की हालत में आपकी नुसरत के लिए उठूंगा, मेरे हाथ में तलवार हो, मेरे हाथ में नेजा हो और मैं आपकी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ जो हुक्म आप देंगे मैं उठ खड़ा होऊंगा, ये कौन करेगा? डॉक्टर साहब कहते थे जो जिंदगी में आमादा हो इमाम जमाना के लिए। जिंदगी में तो वो शख्स डरता रहा, माएं बहनें बेटियां अपने बच्चों को बचाती रहीं कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि जिंदा होकर तो मैं आमादा नहीं हूं अपने आप से जरा अपने गिरेबान में झांक के पूछें आज इमाम जमाना उठ जाए, आ जाए, ऐलान हो जाए तो हम इतने आमादा हैं कि अभी उठे और चल दें। इस तरह जिस तरह इस दुआ अहद में बात कर रहे हैं कि मेरे हाथ में तलवार हो और नेजा और मैं इमाम की नुसरत के लिए उठ खड़ा हूं, कि हम कहेंगे नहीं थोड़ी देर रुक जाए मौला, पहले मैं तैयारी कर लूं। तो जो शख्स जिंदगी में आमादा नहीं है तो इस गलत फहमी का शिकार ना रहेगा, दुआ पढ़ता रहेगा और मरने के बाद उठेगा इस तरह। हाँ जिसने जिंदगी में अपने आप को इमाम जमाना के लिए इस तरह आमादा रखा तो वो जरूर इस हाल में उठेगा कि वो इस दुनिया से चला भी जाए लेकिन वो कफन पहने होगा और खुदावंद तबारों को ताला उसको जिंदगी देगा और वो इमाम की नुसरत के लिए उठेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों बस कि हदफ हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए और हदफ हमारा इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की नुसरत का हदफ वाजे होना चाहिए। वक्त के सबसे बड़े सितमगर से खौफजदा नहीं होना चाहिए। आज आपने देखा कि जुर्रत करे, जुर्रत कुछ नहीं कर सकता अमेरिका आपका, सिर्फ जुर्रत की जरूरत है। खौफ का पे अंदर से खत्म कर दें कि अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता। इस खौफ को डॉक्टर साहब ने रासिक किया, हदफ का वाजे होना, बड़े हदफ की तरफ सफर करना, अपने अहद को जो इमाम जमाना से किया उससे मरबूत रखना और इस नसीहत को याद रखना जो अपनी जिंदगी में डॉक्टर साहब ने की थी कि कभी भी जो इस वक्त का निज़ाम है और निज़ाम विलायत फकी दोस्तों वो वाहिद निजात का रास्ता है। इस वक्त वक्त के सितमगरों के खिलाफ, वक्त के जालिमों के खिलाफ अगर कोई निज़ाम आपको बचा सकता है तो वो यही निज़ाम विलायत फकी है। बाकी निज़ामों को देख लिया, उन्होंने इसके सामने अपने घुटने टेक दिए थे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।